ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने सभी निजी विद्यालयों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए स्कूल फीस अधिनियम को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरकेपुरम विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के बिजली कटौती के आरोपों को निराधार बताया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में 3 आधुनिक ओपन मल्टी व्यायामशालाओं का लोकार्पण किया और भारतीय रेल ने 4 धाम यात्रा के लिए भारत गौरव डीलक्स ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने सभी निजी विद्यालयों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए स्कूल फीस अधिनियम को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस एक्ट के माध्यम से शहर के सभी 1677 स्कूलों की फीस पारदर्शी तरीके से नियंत्रित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में लगातार फीस में बढ़ोतरी होती रही है।
फीस लगातार पिछली सरकारों के समय में बढ़ती रही है, परंतु कभी भी सरकार के द्वारा उस फीस को रोका नहीं गया था। पहली बार दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया, एक्ट बनाया, और वो एक्ट जो अपने आप में फुल प्रूफ है, जिसमें हर एक के साथ न्याय है, सभी पार्टीज जो इसमें जुड़ी हैं, सबके साथ बातचीत करते हुए उसको लीगली भी वेट किया गया।
श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाकर इस अधिनियम पर मोहर लगाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आरकेपुरम विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि वैन के जरिए राजधानी के 70 विधानसभा क्षेत्रों में योजना के लिए पंजीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
ये एक वैन है पूरी, इसमें 2 कंप्यूटर ऑपरेटर भी बैठे हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से 70 साल के दिल्ली में जितने बुजुर्ग हैं, उनका व्यय वंदना योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने की गाड़ी 70 दिन 70 गाड़ियाँ 70 विधानसभाओं में 70 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों के लिए सरकार के 70 दिन पूरे होने के अवसर पर आज ये लॉन्च की जा रही है।
दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के बिजली कटौती के आरोपों को निराधार बताया। श्री वर्मा ने कहा कि आतिशी के आरोप बेबुनियाद हैं और उनकी जानकारी में बिजली कटौती की कोई समस्या नहीं आई है। उन्होंने कहा कि आंधी और बारिश के कारण कुछ समय के लिए बिजली जा सकती है। श्री वर्मा ने कहा कि सरकार मानसून का इंतजार कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार मानसून में शहरवासियों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा।
हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं मानसून का, और हम भी देखेंगे कि हमारे अधिकारियों ने कितना काम किया। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार मानसून में इतना जल भराव नहीं होगा। सारे अधिकारियों को जो हमने टाइमलाइन दी हुई है, उसी टाइमलाइन से ही काम चल रहा है, तो ये देखकर लगता है कि सारे काम ठीक हो रहे हैं।
साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के अनुवाद पुरस्कार के लिए सभी 24 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में अनुदित पुस्तकें आमंत्रित की हैं। साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव के अनुसार ये पुस्तकें 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 के बीच पहली बार प्रकाशित होनी चाहिए। अकादमी ने अनुवादकों, प्रकाशकों और पाठकों से 31 मई तक योग्य पुस्तकों की एक प्रति भेजने का अनुरोध किया है। आवेदन प्रक्रिया और नियमों की जानकारी साहित्य अकादमी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में 3 आधुनिक ओपन मल्टी व्यायामशालाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि रोहिणी के 13 पार्कों में से 3 पार्कों में अब आधुनिक व्यायामशाला ढांचा उपलब्ध हो गया है और शेष पार्कों में भी जल्द ही ऐसी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये पहल पार्कों को समावेशी और स्वास्थ्य केंद्रित स्थानों में बदलने की योजना का हिस्सा है। श्री गुप्ता ने कहा कि उनकी संज्ञान में लाई गई हर समस्या को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सुलझाया जाता है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने नागरिकों को शिकायत निवारण सेवाएं प्रदान करने के लिए NDCC कन्वेंशन सेंटर एक दिवसीय शिविर आयोजित किया। NDMC ने बताया कि इस दौरान 83 शिकायतें प्राप्त हुई। इसके अलावा NDMC पालिका परिषद क्षेत्र के निवासियों और सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए एक जन सुविधा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। नागरिक इस पोर्टल का उपयोग शिकायत दर्ज करने और शिकायत की स्थिति पर नजर रखने के लिए कर सकते हैं। वहीं एनडीएमसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जनता से शिकायत प्राप्त कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय रेल ने चार धाम यात्रा के लिए भारत गौरव डीलक्स ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये विशेष ट्रेन 27 मई को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 17 दिनों में देश के चारों धाम सहित अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी।
इस ट्रेन के माध्यम से यात्री बद्रीनाथ, जोशीमठ, ऋषिकेश, पुरी, कोणार्क, रामेश्वरम, द्वारका और अन्य धार्मिक स्थलों जैसे काशी विश्वनाथ, भीमशंकर, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर सकेंगे। यह ट्रेन कुल 8,425 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पूरी तरह वातानुकूलित इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी श्रेणियों में यात्रा की जा सकती है। ट्रेनों में दो डाइनिंग रेस्टोरेंट, मॉडर्न किचन, क्यूबिक स्नानघर, बायो टॉयलेट, फुट मसाजर जैसी सुविधाएं दी गई है। ट्रेन में सुरक्षा इंतजामों के लिए सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती भी की जाएगी। इस ट्रेन में 150 सीटें उपलब्ध होंगी जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुक किया जा सकेगा। टिकट की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर की जा सकती है। यात्रा टिकट में होटल में ठहराव, तीनों समय भोजन, साइट सीन, ट्रैवल इंश्योरेंस और टूर मैनेजर की सेवाएं उपलब्ध होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षत वैद्यान की रिपोर्ट के साथ भानु प्रताप सिंह।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मध्यस्थता न्याय प्रदान करने का एक अनिवार्य अंग है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता न केवल विचाराधीन विशिष्ट मामले में बल्कि बड़ी संख्या में मुकदमों के बोझ को कम करके अन्य मामलों में भी न्याय दिलाने में तेजी ला सकती है। नई दिल्ली में मध्यस्थता पर राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि मध्यस्थता 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता संवाद, समझ और सहयोग को बढ़ावा देती है।
इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि पिछले दो दशकों में मध्यस्थता ने विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि 2016 से 2025 के बीच मध्यस्थता के जरिए 7,57,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के बावजूद मध्यस्थता अभी भी घरों और गांवों तक नहीं पहुंच पाई है क्योंकि ये अभी भी हाशिए पर है। सम्मेलन में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश BR गवई और अटॉर्नी जनरल R वेंकटमणि भी शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का नामांकन 31 जुलाई तक कराया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित श्रेणियों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। सभी नामांकन आधिकारिक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति संस्था पुरस्कार के लिए बच्चों को नामांकित कर सकती है। बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में नामांकित व्यक्ति का विवरण, उपलब्धि और उसके प्रभाव का वर्णन करने वाला संक्षिप्त विवरण, सहायक दस्तावेज और हाल ही में ली गई तस्वीर संलग्न करनी होती है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रही है और पाकिस्तान के पक्ष में बातें कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हाल की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के परिणामों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी का रवैया भारत की तुलना में पाकिस्तान के हितों के अधिक अनुरूप है। उन्होंने कांग्रेस पर लगातार पाकिस्तान की बातों का समर्थन करने का भी आरोप लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात लगभग 8.25 अरब डॉलर के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष के 7.78 अरब डॉलर के निर्यात की तुलना में 6.01% की वृद्धि हुई है। सेवा निर्यात 13.6% बढ़कर 3.87 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया। व्यापारिक निर्यात 4.37 अरब डॉलर से अधिक हो गया, जबकि गैर पेट्रोलियम निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 6% बढ़कर 3.74 अरब डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने कहा कि कई वैश्विक कंपनियों ने इस संबंध में भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई है। गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट सहित 7 वैश्विक फर्म ने वेव्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने देश भर में हो रहे कम्युनिटी रेडियो के कार्यों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि सभी कम्युनिटी रेडियो किसी न किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं और हमारी परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं। वे आज वेव्स में कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मुरुगन ने 10वें राष्ट्रीय कम्युनिटी रेडियो पुरस्कार भी प्रदान किए। डॉक्टर एल मुरुगन ने मुंबई में वेव्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की लाइव इवेंट इकोनॉमी अ स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इम्पेरेटिव श्वेत पत्र भी जारी किया। इसमें देश के तेजी से बढ़ते लाइव मनोरंजन उद्योग का व्यापक विश्लेषण, उभरते रुझानों, विकास के प्रक्षेपक और क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए कार्यनीतिक सिफारिशों के बारे में बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के संगठित लाइव इवेंट सेगमेंट में 15% का विस्तार हुआ है और इससे 2024 में राजस्व में अनुमानित 13 अरब रुपए की वृद्धि हुई है। ये भारत के व्यापक मीडिया और मनोरंजन उद्योग में सबसे अधिक वृद्धि दरों में से एक है। देश का लक्ष्य 2030 तक दुनिया के शीर्ष 5 लाइव मनोरंजन स्थलों में स्थापित होना है। इवेंट टूरिज्म में भी वृद्धि हुई है और लगभग 5 लाख प्रशंसक लाइव संगीत कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। डॉक्टर मुरुगन ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2024-25 पर सांख्यिकी पुस्तक भी जारी की। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी उपस्थित थे। भारत और अंगोला ने कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों का आदान प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मनुएल गोंजाल्वेस लोरेंसो के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों का आदान प्रदान किया गया। विदेश मंत्रालय के सचिव दमू रवि ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अंगोला भारत से रक्षा उपकरण खरीदेगा। श्री रवि ने यह भी उल्लेख किया कि खरीदे जाने वाले सामान के संबंध में भारतीय निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ पहले से ही चर्चा जारी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय कुमार जैन ने बताया कि दिल्ली पुलिस की दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों की एंटी नारकोटिक टीम ने 47 अवैध प्रवासियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक टीम, जिसके इंस्पेक्टर विष्णु के नेतृत्व में, एक बड़ा ही नेटवर्क बस्ट किया, जिसमें हमने 47 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट डिटेक्ट किए हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिए हैं। और खाली बांग्लादेशी नहीं, पूरे नेटवर्क में जो इनको लाने का काम करते थे, यहाँ सेटल करने का काम करते थे या इनको इम्प्लॉयमेंट मुहैया कराते थे, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है।
श्री जैन ने कहा कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में कई बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि अवैध प्रवासियों को पकड़ने की कार्रवाई के दौरान 5 भारतीय एजेंटों को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की दक्षिणी पश्चिमी जिले की मानव तस्करी विरोधी टीम ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत 3 लापता नाबालिग लड़कियों को उनके परिवारों से मिलवाया। पुलिस ने बताया कि ये लड़कियां नवंबर 2023 से अप्रैल 2025 के बीच लापता हुई थी। राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री कम 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री कम 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली मंत्रिमंडल ने सभी निजी विद्यालयों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए स्कूल फीस अधिनियम को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के बिजली कटौती के आरोपों को निराधार बताया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में 3 आधुनिक ओपन मल्टी व्यायाम शालाओं का लोकार्पण किया। और भारतीय रेल ने चार धाम यात्रा के लिए भारत गौरव डीलक्स ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।